रहा शिव का संदेश, सुन लो सभी दिशाओं में, आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में, आ जाओ मेरे लाडलो।
ओम शांति। अचित गिरीशम स्यात् कज्जलम सिन्धुपात्रे सुरतरुवर शाखा लेखिनी पत्र मुरवी लिखति यदि गृहे त्वां शारदा सर्वकालम् तदपि तव गुणानां एष पारं न याति तदपि तव गुणानां एष पारं न याति। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शिव परमात्माय नमः। आप सर्व को सुनने वाले मेरे सर्व भाई बहनों को, सभी को आज की महाशिव जयंती और आज का महात्योहार शिवरात्रि का त्योहार सभी को बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। और शिव जयंती जो कि हम सर्व की आत्माओं के परम प्रिय परम पिता परमात्मा के अवतरण की जयंती है, अर्थात विश्व पर परम पिता परमात्मा के पधारने की जयंती है। तो आज की इस जयंती के पावन पर्व और पावन शुभ दिवस पर सभी को बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। परम प्रिय परम पिता परमात्मा शिव बाबा का यह महाशिवरात्रि का त्योहार वास्तव में सर्व धर्म की आत्माएं, चाहे वो किसी भी धर्म की आत्मा हो, चाहे वो किसी भी भाषा की बोलने वाली आत्मा हो, किसी भी जाति की वह आत्मा हो, चाहे वो किसी भी देश में निवास करने वाली आत्मा हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे अज्ञानी हो, चाहे नास्तिक हो, चाहे आस्तिक हो, चाहे भक्ति करते हो, चाहे भक्ति ना करते हो, चाहे प्रभु को स्वीकार करे या ना करे, चाहे प्रभु को अपना पिता माने या न माने, परंतु जैसे पिता पिता ही होता है, बच्चों के ना कहने से पिता मिट नहीं जाता। जैसे सूर्य है, अपने स्थान पर वो रोशनी देता है, वो चमकता है और सारे ही विश्व को प्रकाशित करता ही रहता है, ठीक परम प्रिय परम पिता परमात्मा हम उसको अपना पिता स्वीकार करें या न करें, परमात्मा भगवान ईश्वर अल्लाह गॉडफादर खुदा हम कहें या न कहें, परंतु वह हमारे परम पिता परम आत्मा हैं और वो भी हमारे रूहानी पिता हैं, हमारे आत्माओं के परम पिता हैं और हम सर्व आत्माएं उनको अपना माता पिता कहें न कहें परंतु वो हमारे माता पिता हैं। इसलिए हमें अपने इस मात पिता की इस जयंती पर, इस महाशिवरात्रि के त्योहार पर दो वचन तो उनके परिचय के अवश्य ही सुनने ही चाहिए। तो वो परमपिता परमात्मा शिव परमात्मा, जिसका आप यहाँ पर मूर्ति के स्वरूप में स्वरूप देख रहे हो, जिसका स्वरूप न किसी हम मनुष्य शरीर जैसा कोई शरीर है, ना ही इनका किसी देवी या देवता जैसे पूज्यनीय श्री लक्ष्मी नारायण, श्री राधे कृष्ण, श्री सीताराम आदि आदि अनेका अनेक देवी देवताएं हैं, ना ही उनके जैसा सजा सजाया शस्त्रधारी कोई स्वरूप है, अर्थात न मनुष्य देह है, ना ही देवों का कोई देह दिखाई पड़ता है, परंतु उनसे भी भिन्न यह एक अलग स्वरूप दिखाई पड़ता है। भले उनके अवतार के लिए ये भी कहा गया कि वह मनुष्य योनि को छोड़कर मत्स्य अवतार के रूप में आए, वारा अवतार के रूप में आए, नृसिंह अवतार के रूप में आए, परंतु उनका यह भी स्वरूप यहाँ दिखाई नहीं पड़ता, अर्थात उनका वह भी स्वरूप नहीं है। तो फिर परमपिता परमात्मा का यह स्वरूप क्यों? और इस स्वरूप में यदि परमात्मा सृष्टि पर आए तो आप कल्पना कीजिए कि इस रूप में आने वाले को हम कैसे देखेंगे? क्या वो इसी प्रकार पत्थर के ही काले काले स्वरूप में हमारे सामने उपस्थित होंगे स्थूल रूप से, या फिर वो परमपिता परमात्मा कोई अन्य रूप धर करके हमारे पास आएंगे, या फिर वो परमपिता परमात्मा यदि इसको ज्योतिर्बिंदु ज्योतिर्लिंग कहते हैं तो क्या वह प्रकाशित रूप में एक लिंग स्वरूप प्रकाशित लिंग स्वरूप में वो हमारे सामने उपस्थित होंगे? क्या वो सूक्ष्म कोई प्रकाशित बिंदु के रूप में हमारे सामने उपस्थित होंगे? या फिर गीता में जैसा उनका वर्णन है कि हजारों कोटि सूर्यों से भी अधिक तेजशाली, अधिक तेज और ऐसा तेज जिसको अर्जुन भी सहन नहीं कर सके और कहना पड़ा कि बस करो प्रभु, मैं आपके इस दैदीप्यमान प्रखर तेज वाले रूप को नहीं देख पा रहा हूँ, नहीं सहन कर पा रहा हूँ, मुझे आप मोहिनी मूर्त दिखाइए। तो परमपिता परमात्मा का असली रूप क्या है? क्या जो देवी देवताओं के रूप में मंदिरों में जो प्रस्थापित हैं देवी देवताएं, जिनको सभी भगवान भगवती समझकर और उनकी जाकर के भक्ति करते हैं, क्या वह परमात्मा का स्वरूप है? या फिर जो अनेक अवतारों में, यह जो विभिन्न प्रकार के अवतारों का विभिन्न रूपों से जो वर्णन किया गया है, जो मैं पहले बता चुकी, क्या परमपिता परमात्मा का ऐसा स्वरूप है? तो फिर क्या परमात्मा का यह स्वरूप है? किस स्वरूप को हम स्वीकार करें? और फिर जबकि वो मुझ आत्मा के पिता हैं, तो मैं आत्मा कैसी हूँ और पिता मेरा कैसा है, ये जानना तो हर मनुष्य आत्मा के लिए अति 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 आवश्यक है। तो आज है महाशिवरात्रि, आज है शिव जयंती, तो क्यों नहीं आज हम शिव का परिचय प्राप्त करें? आज हम महाशिवरात्रि और शिव जयंती जिसकी मनाई जा रही है, हम जरा उनकी ओर भी अपने ध्यान को आकर्षित करते हुए हम ये सुने कि ये शिवलिंग जो है, ये जो ज्योतिर्लिंग है, उसके नाम से इतना बड़ा भारी त्योहार महाशिवरात्रि के रूप में क्यों और किस लिए मनाया जाता है और उनसे हमारा क्या नाता, हमारा उनका आपस में क्या संबंध। लेकिन आप सभी को यह अवश्य पता होना चाहिए और यदि पता नहीं तो आज आप अवश्य ही इस बात को सुन करके और इसको समझने का यत्न करें कि यह जो ज्योतिर्लिंगम जो है वह है आत्माओं के पिता परमपिता परमात्मा का प्रतीक, उसका स्वरूप। परंतु उस स्वरूप को यहाँ पर भक्ति करने अर्थ कहो या हम मनुष्य आत्माएं उन्हें समझ सकें इसलिए कहो, यह परंपरा से स्वरूप, इस स्वरूप की पूजा होती आई है और सभी पूजा करते भी हैं। विशेष हमारे भारत देश के अंदर 12 ज्योतिर्लिंगम तो बहुत ही मशहूर है। परंतु मैंने जैसे शुरुआत में श्लोक बोला, उस श्लोक का अर्थ भी इस परमपिता परमात्मा की महिमा का है जो हमारे शास्त्रों के अंदर वर्णित है। और ये श्लोक में यही भाव और अर्थ दर्शाए गए हैं कि परमपिता परमात्मा जो है उसका गुण वर्णन करते हुए माँ शारदा, माँ सरस्वती जो ज्ञान की अधिष्ठात्री है, वह कहती है कि हे प्रभु, मैं समस्त धरती को एक पत्र बना लूं और जितने भी सृष्टि के ऊपर वृक्ष हैं उनकी डालियों की मैं कलमें बना लूं और फिर जितने भी समुद्र और पहाड़ हैं उनको घोल करके मैं स्याही बना लूं और फिर ये सर्व साधन लेकर के मैं यदि तेरी महिमा लिखने बैठूं तो भी तेरी महिमा का पार नहीं है, अर्थात मैं लिखने में असमर्थ हूँ। इतना वह परमपिता परम आत्मा परमात्मा शिव पिता, जिसका नाम का अर्थ है कल्याणकारी, सदा शिव अर्थात सदा कल्याण करने वाले, जो स्वयं भू हैं, स्वयं प्रकट हुए, जिसके पहले भी कोई नहीं था, जिसके बाद भी कोई नहीं होगा और जिसके होते कोई प्रभु कहला भी नहीं सकता। तो ऐसे स्वयंभू परमपिता परमात्मा यह ज्योतिर्बिंदु, ये मुझ आत्मा के नहीं लेकिन हम सब के इस मनुष्य देह के अंदर जो चैतन्य सत्ता आत्मा भ्रुकुटी के बीच में ज्योति स्वरूप में बिंदु स्वरूप में विराजमान है, उनके वह परमपिता परमात्मा है। और आज के दिन सभी भक्तजन उनकी भक्ति करते हैं, रात को 12 बजे से लेकर के ही ओम नमः शिवाय की धुन शुरू करते हैं, पूजा शुरू करते हैं, सो दूसरे दिन रात के 12 बजे तक अविरत अखंड जाप चलता है, अखंड पूजा चलती है, भाविक भक्त उपवास करते हैं, विशेष आज के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, फलाहार करते हैं, उपवास करते हैं, शिव के मंदिर में अवश्य जाते हैं, वहाँ जा करके उन पर दूध की लोटी भी चढ़ा करके आते हैं और उस शिव के ऊपर बेल पत्र रखते हुए और उस शिव से वरदान की भी प्राप्ति करके आते हैं। और जो भी अपने मन की इच्छाएं हैं, जो भी अपनी मनोकामना है वो उनके आगे रखते हैं और अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए उनसे वरदान भी लेते हैं। तो ये परमपिता परमात्मा की शिवरात्रि इतनी धामधूम से क्यों मनाते हैं? आप देखेंगे हमारे भारत देश के अंदर तो कोई भी शहर गांव ऐसा आपको नहीं प्राप्त होगा जहां पर शिव जी की प्रतिमा प्राप्त न हो या शिव का कोई भी छोटा बड़ा मंदिर प्राप्त न हो। तो शिव जो है वो हम मनुष्य और देवताएं और जो भी अवतार में भिन्न भिन्न अन्य स्वरूप जो मनुष्य देह से भी निराले स्वरूप है जिसको हम पशु योनि कहें, परमपिता परमात्मा इन सभी योनियों से अलग स्वरूप के यहाँ दिखते हैं और इनका ये महाशिवरात्रि का त्योहार इतना मनाया जाता है, इतना इस त्योहार को महत्व दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे आपके सर्व के पिता हैं। जैसे हरेक का अपना लौकिक पिता होता है, हद का पिता होता है, तो ये हैं हमारे बेहद के पिता। शरीर के पिता अलग, तो ये है आत्मा के पिता। तो हमारे शरीर के पिता और आत्मा के पिता, ये दो पिता। शरीर के पिता के बावजूद भी हम इस पिता को याद करते हैं, क्योंकि ये पिताओं के भी पिता हैं, माताओं की माता है, शिक्षकों के भी ये शिक्षक हैं, गुरुओं के भी ये सतगुरु हैं। और यही कारण है कि यही परमपिता परमात्मा जो मनुष्य देह, देवी देवताओं की देह या फिर पशु योनि की देह, वो किसी भी देह वाले नहीं है, अर्थात ये निराकार है। यानी उनकी भेंट में उनका ऐसा आकार नहीं है, इनका आकार शिवलिंग ज्योतिर्बिंदु समान है। और यह निराकार पिता परमात्मा के गुणों का मैंने वर्णन किया कि वो सर्व गुणों के सागर हैं, सर्व शक्तियों से भरपूर हैं, संपन्न हैं, यहाँ तक कि वो हम सभी को गुणों का दान करते हैं, शक्तियों का दान करते हैं, और वह सर्वशक्तिमान हैं। और सर्वशक्तिमान स्वयं भू होने के कारण उन्हें इस सृष्टि रूपी काल चक्र का भी ज्ञान है, प्रकृति के भी सभी गुणों का भी उन्हें ज्ञान है, इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का भी ज्ञान है, और इस सृष्टि पर इस सृष्टि रूपी बेहद नाटक के रंग मंच पर हम आत्माएं जब परमपिता परमात्मा के साथ परम धाम ऊपर में जहाँ व्यक्त सूर्यगण और तारागण भी नहीं दिखते परंतु उनसे भी पार जहाँ हमारे ये नेत्र उस धाम को उस तत्व को नहीं देख सकते, ऐसा वो शांति धाम, परम धाम, निर्वाण धाम, मोक्ष धाम, परमपिता परमात्मा वहाँ के निवासी हैं, बहुत दूर के निवासी, तो वहाँ से वह इस सृष्टि पर आते हैं। और यह सृष्टि पर आने की उनकी जो क्रिया है उस क्रिया को ही अवतरण कहा गया है। तो अवतरण प्रभु का होता है और प्रभु के इस अवतरण की ही यह जयंती, यानी प्रभु के आने को जयंती कहा गया, जन्म कहा गया। परंतु यह जन्म हम मनुष्यों जैसा नहीं परंतु गर्भ से भी ऊपर उठकर, यानी प्रकृति के अधीन नहीं परंतु प्रकृति को अधीन करके और वह किसी मनुष्य तन में प्रवेश करने योग्य होने के कारण वो प्रवेश करते हैं। और यह प्रवेश करने की क्रिया उनका दिव्य अलौकिक जन्म कहा जाता है। और यही दिव्य अलौकिक जन्म जयंती के रूप में, महाशिवरात्रि के रूप में, उत्सव के रूप में मनाया जाता है। और ये अवतरण, ये उनका इस सृष्टि पर आना क्यों होता है, ये भी हम सभी बच्चे सुनते आए हैं कि गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में शिव भगवानु वाच, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। जब जब इस सृष्टि पर अधर्म की वृद्धि होती है, धर्म की ग्लानि होती है, तब तब मैं इस सृष्टि पर अधर्म का विनाश और सत धर्म की स्थापना करने हेतु अवतरित होता हूँ। तो परमपिता परमात्मा फिर से वर्तमान समय अधर्मी बनी हुई इस कलयुगी दुनिया के अंतिम समय में, अर्थात सृष्टि चक्र का जो एक कल्प है जिसमें यह चार युग सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, तीनों युग बीत चुके, कलयुग भी पूरा बीत चुका, अब अंत में आकर के पहुंचा है। अब ये कलयुग का अंत अर्थात अधर्मी दुनिया का विनाश और नई सतधर्मी दुनिया की स्थापना अर्थात फिर से चक्र की शुरुआत, वह सतयुगी सतो प्रधान समय फिर से इस सृष्टि पर आना है। और उसके लिए परमपिता परमात्मा निराकार शिव, जो इस जन्म पुनर्जन्म के चक्र से रहित है, जन्म मरण के चक्र से रहित है, सुख दुख से जो न्यारा है, जो इन किसी भी बातों में नहीं आता है, तो वह परमपिता परमात्मा परम पवित्र होने के कारण, सदा पवित्र होने के कारण, पतित पावन होने के कारण, नई दुनिया के नियंता, नई दुनिया के रचयिता, नई दुनिया के निर्माता होने के कारण फिर से नई दुनिया हम बच्चों के लिए स्थापन करने के लिए, क्योंकि हम बच्चे इस सृष्टि पर अभी बहुत दुखी हो गए हैं, बहुत अशांत हो चुके हैं, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार, विषय विकार, इनसे इतने परेशान हो चुके हैं। अब ये आत्माएं पुकार रही हैं कि हे प्रभु सृष्टि पर आओ, तो प्रभु आए हैं। ये खुशखबरी आप आज हमसे सुने तो वो परमपिता परमात्मा शिव बाबा सृष्टि पर अवतरित हुए हैं और अब अवतरित होकर अधर्मी दुनिया का विनाश करने हेतु और सतधर्म की दुनिया की स्थापना करने हेतु उन्होंने त्रिदेव की रचना की है। ये बेलपत्र चढ़ाते हैं, ये तीन लकीरें हमें क्या कहती है? तो परमात्मा को कहते हैं जी ओ डी गॉड। जी माना जनरेटर, ओ माना ऑपरेटर, डी माना डिस्ट्रॉयर। तो वो फिर से अधर्मी असत वाली दुनिया का विनाश करने और सत धर्म की दैवी दुनिया स्थापन करने के लिए इन तीन देवताओं की रचना रचते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर के द्वारा विनाश। तो शंकर के द्वारा विनाश होने के पश्चात तुरंत नई दैवी दुनिया आती है। तो शंकर के साथ शिव का अति नजदीक का वह संबंध हो जाता है, अर्थात उनकी यह जो विनाश करने की शक्ति है, वह शक्ति को लेकर के प्रभु को इस सृष्टि पर आना होता है। और ब्रह्मा जो कि उनकी स्थापना शक्ति है, उस स्थापना की शक्ति को लेकर के परमात्मा यह दो कार्य करते हैं, एक तरफ स्थापना का तो दूसरी तरफ विनाश का। तो स्थापना का कर्तव्य करने के लिए अब ये निराकार है, बिंदु रूप में नीचे आवे तो हमको ज्ञान कैसे सुनावे, स्थापना कैसे करें, कैसे हमें बतावे कि मैं इस अधर्मी दुनिया का विनाश करने आया हूँ और सतधर्म की दुनिया की स्थापना करने तुम बच्चों के लिए आया हूँ, क्योंकि तुम बच्चों ने पुकारा और मैंने वायदा किया था, मैं वायदा निभा रहा हूँ, कैसे बतावे। तो हम आत्मा ने जैसे ये पांच तत्व का बना हुआ शरीर धारण किया तो प्रकृति को अधीन करके, किसी एक व्यक्ति की प्रकृति को अधीन करके, उसमें दिव्य प्रवेश करके और उनके मुख से हम बच्चों को ज्ञान की गंगा बहलाई अर्थात ज्ञानामृत पिलाया, तो सर्व पेय पदार्थों में दूध को कहते हैं अमृत। तो उन्होंने आकर के हम बच्चों को ज्ञानामृत पिलाया, यही कारण उनके ऊपर दूध की लोटी चढ़ाते, त्रिदेव की रचना की इसलिए बेल पत्र चढ़ाते और अक के फूल, कमल के फूल। तो वो परमपिता परमात्मा, चाहे कोई भी बच्चा कैसा भी हो, पापी हो चाहे कांटे जैसा दुखदाई हो, लेकिन वो भी प्रभु का बच्चा है और गर्भग्रस्त में रहते हुए कमल पुष्प के समान खिलने वाले या फिर अन्य फूलों की तरह खिल करके इस बगिया को महकाने वाले कैसे भी फूल हो, परंतु वो सभी प्रभु के बच्चे हैं, संतान हैं। तो वो परमपिता परमात्मा ब्रह्मा जिसके तन में प्रवेश करके ज्ञानामृत देते हैं, हम बच्चों को पिलाते हैं और हम बच्चों की ज्योत जगाते हैं, जिस ज्योत के उपलक्ष में अखंड जाप की ज्योत इस प्रभु के आगे जगाई जाती है। तो ये प्रभु हमें फिर से हमारी ज्योत जगाकर उस ब्रह्मा तन में प्रवेश कर ब्रह्मा को निमित्त बनाकर, अर्थात जिस मनुष्य देह में प्रवेश किया उसका नाम ब्रह्मा रखते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति के द्वारा परमपिता परमात्मा अपनी स्थापना की जो शक्ति है, उस शक्ति से इस कलयुगी दुनिया का परिवर्तन, इस पुरानी सृष्टि का परिवर्तन, इस विश्व का परिवर्तन करने के लिए उसको निमित्त बनाते हैं, इसलिए उनका नाम धरा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा। परमपिता परमात्मा, शिव परमात्मा, शिव बाबा, हम सभी का बाबा, वो फिर हम बच्चों के लिए बहुत सुंदर स्वर्गीय सृष्टि स्थापन करते और नरकीय सृष्टि का विनाश करते। अतः शिवरात्रि और शिव जयंती इस ही दिव्य कर्तव्य की स्मृति में मनाया जाता है। वैसे भी कोई व्यक्ति आकर के जब चली जाती है तब उसकी स्मृति में, उनके कर्तव्यों की स्मृति में यह कोई भी त्योहार या कोई भी उनका यादगार दिन विशेष रूप से उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो परमपिता परमात्मा ने भी सृष्टि पर आकर के जो महान दिव्य कर्तव्य किया और हम सर्व बच्चों को मुक्ति दी, जिनको मुक्ति चाहिए उनको मुक्ति दी, जीवन मुक्ति चाहिए उनको जीवन मुक्ति दी, जिनको दुख के बंधनों से छूटना है उनको दुख के बंधनों से मुक्त करते हैं, ये ज्ञानामृत पिलाकर। तो फिर से आप सभी को आपके ही अपने पिता की इस शिव जयंती की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो और मुबारक हो। ओम शांति। Thank you.